छायावाद में अगला शीर्षक है जो कि पांचवा है, देवी माँ सहचरी प्राण। प्रकृति की भांति ही छायावादी कविता में नारी की भी प्रधानता दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि छायावाद के विरोधी बहुत दिनों तक छायावाद को स्त्रैण काव्य कहते रहे। छायावाद के पूर्ववर्ती काव्य में नारी संबंधी रचनाएं न हों ऐसा तो नहीं है, किंतु वे रचनाएं पुरुष प्रधानता की ही द्योतक हैं। द्विवेदी युग की कविता में नारी के प्रति दया का भाव तो है, पर यथोचित सम्मान का भाव नहीं है। उस युग में निसंदेह विधवाओं को लेकर अनेक कविताएं लिखी गई, लेकिन उन कविताओं में विधवा को खाना कपड़ा दिलाने का ही आग्रह अधिक है, और इसलिए विधवा विवाह को आवश्यक ठहराया गया है। द्विवेदी युग का यह काव्य एक प्रकार से अनाथालय प्रतीत होता है, जिसमें नारी को आश्रय देने के साथ ही बंदनी भी बना दिया गया है, और इस तरह वह अपने सहज जीवन से विच्छिन्न कर दी गई। आर्य समाज की कट्टर शुद्धिवादी प्यूरिटन नैतिकता ने द्विवेदी युग के संपूर्ण काव्य को निरसता और वजना से भर दिया। चारों ओर निरस विशद गुणमय फल वाले कपास का वातावरण छा गया। संभवतः इसी प्रभाव के कारण आरंभ की स्वच्छंदतावादी कवियों में नारी की तुलना में प्रकृति को भी अपनाने योग्य कहा गया है। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक प्रकृति के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देता है, और 1918 में पंत भी इसी प्रकार सोचते हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। लेकिन धीरे धीरे यह संकोच कम हुआ, द्विवेदी युगीन आर्य समाजी नैतिकता का प्रभाव क्षीण हुआ, और प्रकृति के बीच ही छायावादी कवि को नारी के नैसर्गिक रूप का दर्शन हुआ। यही वजह है कि त्रिपाठी जी का पथिक भी आगे चलकर अपनी भूल महसूस करता है और प्रकृति से लौटकर पुनः अपनी पत्नी को स्वीकार करता है। पंत भी उच्छ्वास और आंसू और ग्रंथ की बालिका के साथ स्नेह सूत्र में बंधते हैं, और यहाँ तक कि भावी पत्नी की कल्पना भी करने लगते हैं। वे अनुभव करते हैं कि प्रकृति से ही काम नहीं चल सकता। प्रकृति चाहे जितनी सुंदर और भावप्रवण हो, किंतु वह पूर्ण रूप से पुरुष के भावों को प्रतिध्वनित नहीं कर सकती, अथवा अधिक से अधिक उन भावों को प्रतिध्वनित ही कर सकती है। प्रतिध्वनि को ज्यों का त्यों लौटा देने के सिवा शून्य क्षितिज के पास और सामर्थ्य क्या है, और तब स्वाभाविक है कि वह उस टकराती विलखाती सी पगली सी फेरी देती हुई प्रतिध्वनि के लिए कोई दूसरा आश्रय ढूंढे, ऐसा आश्रय जो प्रत्युत्तर दे सके। कवि ने बड़ी विकलता के साथ अनुभव किया कि हाय, किसके उर में उतारूं अपने उर का भार, और यही प्रकृति की अपूर्णता प्रतीत हुई तथा जिस उसके स्थान पर नारी का आविर्भाव हुआ। निराला के तुलसीदास का मन जब रंग पर रंग छोड़ता हुआ निस्तरंग आकाश में उड़ रहा था, तो वही उसे रत्नावली के दर्शन हुए। उसी समय छाया के ऊपर तारिका सी चमकती हुई रत्नावली दिखाई दी। तुलसीदास क्षण भर वह सौंदर्य देखते रहे, और फिर जब वहां से उतरे तो संपूर्ण प्रकृति रत्नावली की छवि से रंगी हुई दिखाई पड़ने लगी। फिर तो उन्हें सारा संसार ही अबलामय दिखाई देने लगा। यह स्थिति प्रसाद के मन की भी हुई। महाप्रलय समाप्त होने के बाद जब प्रकृति का रमणीय रूप सामने आया, तो उसी दृश्य में उनकी अलस चेतना की आंखें भी खुल गई, और फिर तो नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद सुखद करके अनुमान। इस अनादि वासना के जगते ही मनु के मन में अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीर तम सूना राज। फलतः पहले तो विश्व कमल की मृदुल मधुकरी तथा इंद्रजाल जननी रजनी सामने आई, और उसके बाद स्वयं काम तनया श्रद्धा। इस प्रकार जो प्रकृति आरंभ में नारी विरोधी प्रतीत होती थी, वही नारी की आवश्यकता अनुभव कराने वाली तथा कारण बन गई। इस इस पर यह भी कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन आर्य सामाजिक नैतिकता की प्रतिक्रिया का पहला सोपान प्रकृति प्रेम था, जिसने नारी प्रेम के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। कविता में नारी संबंध दृष्टिकोण में यह जो परिवर्तन हुआ, यह आकस्मिक नहीं है। 19वीं सदी में जो सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था, वह 20वीं सदी का प्रथम पाद समाप्त होते होते बहुत जोर पकड़ गया। नारी शिक्षा में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1900 में शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों की संख्या जहां लगभग 4 लाख थी, वहां 1925 में यह संख्या उसकी दुगनी अर्थात 12,30,698 हो गई और 1935 तक जाते जाते 7 गुनी से भी ज़्यादा हो गई। नई शिक्षा के द्वारा लड़कियों को नई दुनिया का ज्ञान हुआ और उनमें नए विचारों का अभ्युदय हुआ। इससे लड़कियों में स्त्री स्वतंत्रता का भाव पैदा हुआ। नई पीढ़ी की देखा देखी पुरानी पीढ़ी की महिलाओं में भी अनजाने ही नवजागरण के प्रति आकर्षण दिखाई पड़ा। लड़कियों ने अपनी माताओं और सासों के प्रति जकड़े हुए मन को थोड़ा सा ढीला किया। वैसे ज्ञान तो अपने आप में ही मुक्ति का कारण है, किंतु नई शिक्षा ने इससे भी बड़ा काम यह किया कि पढ़ लिख कर लड़कियां जीवन के व्यापक कार्य क्षेत्र में आईं। विद्यालयों में एक ओर यदि वे लड़कों के संपर्क में आईं, तो विद्यालयों से निकलकर अध्यापन, डॉक्टरी, वकालत वगैरह का पेशा अपनाकर उन्होंने व्यापक समाज के साथ संपर्क स्थापित किया। पुरुष और स्त्री के सहयोग से समाज का सदियों पुराना जीर्ण शीर्ण पर्दा फट गया, दुराव कुछ कम हुआ और आपस में एक ऊंचे स्तर की समझ बूझ का भाव पैदा हुआ। मुक्त नारी में पुरुष को अभिनव सौंदर्य का दर्शन हुआ। नारी के मुक्त मन के पुरुष को अस्पृहणीय भाव संपदा का परिचय मिला और इस तरह नारी की मुक्ति में उसे अपनी मुक्ति का द्वार दिखाई पड़ा। पुरुष और स्त्री के बीच का पुराना तनाव कुछ कम हुआ और पारस्परिक विचार विनिमय के आधार पर उच्चतर सहभाव विकसित होने लगा। मिलने जुलने से ही मेल जोल होता है, गलत फहमी दूर होती है, परिचय बढ़ता है और फिर उस बीच यथोचित रागात्मक संबंध का उदय होता है। सामाजिक जीवन के साथ ही स्त्रियों ने इस युग में राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। कांग्रेस के आंदोलन में काफ़ी स्त्रियों ने योग दिया। उन्होंने दुकानों पर पिकेटिंग की, सार्वजनिक सभाओं में भाग लिया, मंच से ओजस्वी भाषण दिए, वे जुलूसों में निकलीं और उन्होंने लाठियों का वार झेला तथा अंत में वे जेल भी गई। इस तरह वे घर से बाहर आई और बाहर आकर उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया। इन तमाम बातों का असर कविता पर भी पड़ा। नारी के प्रति पहले जो दया का भाव था, वह बदल गया। इस युग में नारी ने पुरुष की दया के स्थान पर अपने अधिकारों की मांग की। इस अधिकार भावना ने नारी पुरुष के बीच कहीं समानता का भाव पैदा किया, कहीं अस्पर्धा का भाव और कहीं उसकी शक्ति स्वीकार का भाव। कुल मिलाकर भिखारिणी अब मानसिक रूप से स्वामिनी बनी। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो सकती है। यदि विधवा संबंधी द्विवेदी युग और छायावादी युग की दो कविताएं अथवा कहानियां ले ली जाएं, तो दोनों युगों का अंतर साफ हो जाएगा। सुधार युग के नेता विधवा की समस्या का सबसे बड़ा हल विवाह समझते थे। इसमें विधवा को खाना कपड़ा का जोग जुटाने का भाव तो था, लेकिन उसमें नारी की स्वतंत्रता स्वीकार करने का भाव न था। इसलिए विवाह के लिए पुरुष को तैयार करते समय प्रायः बाल विधवा होने का तर्क दिया जाता था। उन लोगों के अनुसार पुनर्लग्न का अधिकार बाल विधवा को विशेष रूप से था, क्योंकि पवित्रता का सिहरा उसी के सिर बंधा होता है। इस धारणा का पर्दाफाश आगे चलकर शरत चंद्र जैसे लोगों ने किया। लीला रानी गंगोपाध्याय को एक पत्र में शरद बाबू लिखते हैं, तुमसे एक प्रश्न और करूंगा, जिस विधवा ने पति को जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन जिसने एक बार जाना है, पहचाना है, अर्थात जो 16-17 वर्ष की उम्र में विधवा हुई है, उसे क्या अपने लंबे जीवन में और किसी को प्यार करने या ब्याह करने का अधिकार नहीं? क्यों नहीं? जरा सोच देखने पर पता चल जाएगा कि इसमें यही संस्कार छिपा हुआ है कि स्त्री पति की वस्तु है। स्त्री के रूप में नारी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हेम संशय के अंदर दिन बिता रही है, जिसमें दृढ़ता नहीं है, उसके लिए क्या बंधन ही अच्छा नहीं है? बंधन केवल तभी अच्छा होगा जब इस प्रश्न का अंतिम निर्णय हो जाएगा कि विवाह ही नारी के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेय है, लेकिन मैंने कहीं भी विधवा विवाह नहीं करवाया है। यह बात तुम्हें विचित्र लग सकती है। बाल वैधव्य के आधार पर विधवा को पवित्र मानने की यह भावना त्रिवेदी युग में ही न थी, बल्कि उसका प्रभाव छायावाद के आरंभिक दिनों तक था। निराला की प्रायः उद्धृत की जाने वाली कविता विधवा 1919 में भी यही मनोवृत्ति है। निराला ने जिस विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से पवित्र कहा है, उसने अपना मध्य सुहाग दर्पण में देखा था, बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। पति के साथ कुछ वर्ष बिताकर विधवा होने वाली नारी को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से पवित्र कहने का साहस उस समय स्वयं निराला को भी न था। इसे उस युग के नारी संबंधी दृष्टिकोण का ही प्रभाव समझना चाहिए। शरद बाबू ने इसीलिए लीला रानी की कहानी के माध्यम से इस प्रवृत्ति का विरोध किया है, और फिर उन्होंने स्वयं लिखा, विधवा विवाह न करने की जो बात लिखी है, उसके मूल में भी वही प्रतिक्रिया है। आखिर विधवा विवाह क्यों? किसी बाल विधवा से यदि एक पुरुष ने विवाह ही कर लिया तो क्या होगा? उस पुरुष ने आखिर कौन सा बड़ा काम कर दिया? विवाह तो उसने अभी तभी किया जब प्रमाणित हो गया कि लड़की अनाघ्रात पुष्प और अनास्वादित मधु की तरह विशुद्ध है। इतने बड़े प्रमाण के बाद भी उसने किसी सहज स्नेह के कारण उसे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं किया, बल्कि समाज के दृष्टि में उसे अपनाकर उस पर, उसके माता पिता पर तथा समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया और स्वयं बहुत बड़े समाज सुधारक होने का गौरव लिया। सो अलग, स्वयं तो इतना बड़ा गौरव लिया और उसके बदले उस नारी को दिया क्या? उसके पांव में दास्ता की वही पुरानी जंजीर। शरद बाबू ने जो विधवा विवाह नहीं करवाया है, उसके पीछे इसी ढोंग की प्रतिक्रिया है। इसका मतलब यह है कि सन 1920 के बाद वाले युग में विचारकों ने विधवा समस्या को नारी स्वाधीनता के व्यापक परिदृश्य में रखकर देखा। इस तरह देखने से अकेले विधवा अथवा विधवा विवाह की समस्या ही खत्म हो गई। यही वजह है कि छायावाद युग के कवियों ने विधवा पर कविताएं नहीं लिखी। उन्होंने सवाल को नए सिरे से उठाया। उन्होंने अनुभव किया कि मूल प्रश्न नारी स्वाधीनता का है, प्रश्न विवाह का नहीं, प्रेम का है, बंधन का नहीं, मुक्ति का है। यदि विवाह में बंधन है तो चाहे वह विधवा विवाह हो अथवा कुमारी का, दोनों का आग्रह व्यर्थ है। इस तरह साहित्य में पहली बार स्त्री और पुरुष के बीच वैयक्तिक स्वच्छंद प्रेम का अभ्युदय हुआ। यह प्रेम व्यक्ति स्वातंत्र का ही अनिवार्य परिणाम तथा उसका आवश्यक अंग है। इसके फलस्वरूप पहली बार छायावादी कविता में नारी को प्रेयसी का ऊंचा आसन प्राप्त हुआ। प्रेयसी, प्रिय, प्रियतमे और सखी, सजनी जैसे संबोधन जिस मात्रा में छायावादी कविता में व्यक्त किए गए, पहले शायद ही किए गए हों। सखी और सजनी शब्दों की बहुलता को देखकर कुछ लोगों ने विनोद में छायावाद को सजनी संप्रदाय नाम दे दिया, जैसे यह मध्ययुगीन सखी संप्रदाय का पुनरुत्थान ही हो। छायावादी कविता के इन सखी सजनी संबोधनों की काफी खिल्ली उड़ाई गई, परंतु इन सब से स्त्री पुरुष के बीच स्थापित होने वाली समानता की नवीन भावना के प्रति प्राचीनता के पोषकों का पूर्वाग्रह ही प्रकट होता है। वास्तविकता यह है कि पूर्व पीढ़ी के साहित्यकार स्वयं तो का प्रेम काव्य लिखने से कतरते रहे, लेकिन जब छायावादी कवियों को प्रेम की राशि लुटाते देखा तो और कुछ न पाकर उसका उपहास करके ही अपनी तृप्ति करने लगे। छायावादी कविता में प्रेम को जो प्रधानता मिली वह अपूर्व है। यहाँ तक कि छायावाद को सामान्यतः प्रेम काव्य समझा जाता है। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता का इतना आतंक था कि प्रेम की कविता लिखते हुए कवि जन संकोच करते थे, क्योंकि उन्हें रीतिकालीन कहे जाने का डर था। वस्तुतः द्विवेदी युग में भी नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण बहुत कुछ वही था जो रीतिकाल में था। दोनों युगों में दृष्टिकोणों में मौलिक अंतर नहीं था। अंतर इतना ही था कि रीतिकालीन कवि जिन बातों को निधड़क कह देता था, द्विवेदी युग का कवि उन्हें मन ही मन दबा लेता था। रीतिकाल में स्त्री सुधार का कोई आंदोलन नहीं हुआ, इसीलिए उन कवियों पर कोई नैतिक अंकुश न था। और द्विवेदी युग में प्राचीनता के गर्व से रूढ़ियों के विरुद्ध नवीन प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी, इसलिए एक कवि अपने ऊपर एक प्रकार का नैतिक अंकुश अनुभव करते थे। छायावाद युग तक आते आते नवीन प्रतिक्रिया काफी पुष्ट हो गई और पुरानी रूढ़ियां जर्जर हो चली, इसलिए स्त्री पुरुष के संबंधों में नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हो गई। द्विवेदी युग में प्राचीनता और नवीनता का संघर्ष आरंभ ही हुआ था, जबकि छायावाद युग में इस संघर्ष की नवीन शक्ति काफी प्रबल हो गई। द्विवेदी युग में इच्छा और क्रिया, विवेक का और संस्कार के बीच जो असंगति थी, वह छायावाद युग में बहुत संतुलित हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि द्विवेदी युग के लोग छायावाद युग में आकर नवीन नैतिकता अपना चले, वह तो होना कठिन था। इसका मतलब केवल इतना ही है कि छायावाद युग में युगों की जो नई पीढ़ी आई, उसने स्त्री पुरुष संबंध का यह विकसित रूप सामने रखा, जिसका सूत्रपात द्विवेदी युग में ही हो चुका था। यह नवीन नैतिकता विवेक पर प्रतिष्ठित थी, इसलिए पुरानी पीढ़ी के लोग बौद्धिक स्तर पर उसका खंडन न कर सकते थे और हार कर इसकी प्रधानता उन्होंने स्वीकार कर ली। छायावाद युग में उभरने वाली यह नवीन नैतिकता का प्रेम प्रधान थी, इसमें द्विवेदी युगीन द्विधा न थी। छायावादी कवियों ने प्रेम को इतनी प्रधानता दी कि स्वतंत्र रूप से प्रेम के ऊपर कई कविताएं लिख डाली। जिस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल में कामदेव अथवा मार की प्रधानता थी और काव्य में उसकी उपासना का प्रायः वर्णन किया जाता था, जैसे कालिदास के काव्यों और नाटकों में, उसी तरह छायावाद युग में प्रेम को प्रधानता दी गई। प्रेम के विश्वव्यापी प्रभाव से सभी छायावादी कवि प्रभावित थे, वे प्रेम के जादू में थे। उन्होंने प्रेम को अत्यंत महिमामय रूप प्रदान किया। प्रेम का ही एक सरल स्निग्ध रूप स्नेह है, जिसकी महिमा गाते हुए पंत उच्छ्वास में लिखते हैं, अनिल सालोक लोक में, हर्ष में और शोक में, कहाँ नहीं है स्नेह सांस सा सबके उर में। और फिर स्नेह के एकतामय नाद का गुणगान करते हुए वे आगे कहते हैं, बधे हैं जीवन तार सब में छिपी हुई है यह झंकार, हो जाता संसार नहीं तो दारुण हाहाकार। और सूक्ष्म स्नेह के वर्णन से जब तृप्ति नहीं हुई तो पंत ने उससे भी आगे बढ़कर अनंग पर विस्तृत कविता लिखी, निसंदेह यह अनंग कालिदास के युग का मूर्त कामदेव नहीं है। कालिदास युगीन पौराणिक कामदेव तो शंकर के तीसरे नेत्र से भस्म हो गया। यदि वह उस तरह भस्म नहीं न भी हुआ होता तो आधुनिक विज्ञान उसे अवश्य ही भस्म कर देता। लेकिन वास्तविकता यह है कि पौराणिक पुरुष कामदेव का वाह्य आकार बहुत पहले ही दग्ध हो चुका था और वह सूक्ष्म अनंग हो चुका था। छायावाद तक आते आते उसकी रही सही स्थूलता भी समाप्त हो गई और पंत का अनंग सभी प्रकार छायावादी अनंग है। जिसमें अतीत की केवल स्मृति भर रह गई और अतीत की स्मृति का वह पुनरुत्थान भी अनंग को अधिकाधिक मोहक बनाने के लिए ही है। इस तरह यह अनंग पौराणिक अनंग का नवीन संस्करण है, जैसा कि हर पुनरुत्थान में हुआ करता है। पंत की कामना है ऐसे असीम सौंदर्य सिंधु की विपुल वीचियों के श्रृंगार मेरे मानस की तरंग में पुनः अनंग बनो साकार। ध्यान देने योग्य है कि यह अनंग असीम सौंदर्य सिंधु की विपुल वीचियों का श्रृंगार है और इसे साकार भी होने के लिए कवि कहता है तो मानस की तरंग में। छायावादी कवि अनंग से पुनः शरीर धारण करने के लिए नहीं कहता, कहता केवल जगत में फिर से उठने के लिए निसंदेह नवीन रूप में। और इसमें कोई शक नहीं कि छायावाद में प्राचीन भावना ने प्रेम के नवीन सूक्ष्मतर तथा अधिक सुसंस्कृत रूप में पुनर्जन्म ग्रहण किया। यदि सहसव स्नेह के कवि पंत ने प्रेम के विषय में इतना लिखा तो प्रेम पथिक प्रसाद के हृदय का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। आरंभ में उन्होंने जो कुछ लिखा सो तो है ही, अंत तक जाते जाते उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन दर्शन की प्रतिष्ठा ही काम के आधारशिला पर की। उसके मन की विश्वास को सुदृढ़ करने वाली तथा उच्च स्तर पर ले जाकर प्रतिष्ठित करने वाली श्रद्धा रूपिणी कामायनी काम तनया ही है। प्रसाद की मन को काम कोत्रजा कामायनी तो आनंद लोक में ले ही जाती है। स्वयं काम भी समय समय पर आत्मा की आवाज बनकर जीवन संदेह दे जाया करता है। और प्रसाद का काम यही नहीं कि पौराणिक काम से अधिक भव्य उदात्त और आधुनिक है, बल्कि पंत के अनंग से भी अधिक व्यापक है। काम को संबोध आधुनिक कवि के हृदय का आश्रय लेना न पड़ता यदि प्राचीन कवियों की अभिव्यक्ति से ही उसे तृप्ति हो गई होती। लेकिन ऐसा भी कहीं हुआ है। मनुष्य की यह जो जय यात्रा है उसमें उसके मनोजगत का भी निरंतर विकास होता चल जा रहा है। ऐसी दशा में प्रेम भावना का भी विकास होना स्वाभाविक है। इसलिए प्राचीन काल की प्रेम भावना से अधिक मानव की तुष्टि नहीं हो सकती। आधुनिक मानव मन में जो अनेक प्रकार की सूक्ष्म अनुभूतियां पैदा हो गई हैं, उनकी प्रतिध्वनि प्राचीन काव्य में कैसे मिल सकती। इसलिए वह अपने तृप्ति के लिए नवीन अभिव्यक्ति करता है। प्रसाद के मन को जब काम की यह प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है कि प्यासा हूँ मैं अब भी प्यासा, संतुष्ट ओग से मैं हुआ। प्रसाद के मन के जीवन वन में यह मधुमय बसंत चुपके से रजनी के पिछले पहरों में आता है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि बदली हुई दिखाई देती है। इससे उद्दाम भावना के प्रभाव से आकाश भी शेषनाग की भांति अपना फेनिल फन पटक रहा, मणियों का जाल लुटाता सा उनिद्र दिखाई देता हो, उन्मत्त हुआ कुछ गाता सा। उधर काम के आगमन पर मनु के मन की जो दशा होती है वह तो और भी गुण है। इस गहन मन स्थिति से प्राचीन कवियों द्वारा वर्धित सीधी कामोत्तेजना की कोई तुलना नहीं। लेकिन यह तो हुआ काम का केवल एक पक्ष। प्रसाद का काम उनके मन में एक ओर जीवन की लालसा उत्पन्न करता है तो दूसरी ओर कर्म की प्रेरणा भी देता है, और इन सबके ऊपर वह मंगलमय है। प्रसाद के अनुसार सारा श्रेय काम मंगल से मंडित है और संपूर्ण स्वर्ग इच्छा अथवा काम का ही परिणाम है। इस तरह प्रसाद ने काम को वासना की सीमा से निकालकर व्यापक जिज्ञासा अथवा इच्छा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। प्रेम की मूल प्रवृत्ति काम और रति को यह व्यापकता प्रदान किया। प्रेम को यह प्रधानता निराला के यहाँ भी मिली। परोक्ष रूप से प्रेम की अभिव्यंजना तो अनेक गीतों और कविताओं में हुई है, परंतु उन्होंने प्रेम की महिमा में अलग से एक कविता भी लिखी है, अनामिका की प्रेम के प्रति। कविता में वे लिखते हैं, प्रेम सदा ही तुम अशुद्र हो, उर उर के हीरों के हार, गूथे हुए प्राणियों को भी गूथे न कभी सदा ही सार। निराला का प्रेम एक ओर अशुद्र है तो दूसरी ओर प्रगल्भ भी है। इसे उन्होंने प्रगल्भ प्रेम कविता में प्रमाणित कर दिया है। इस युग की अभिनव प्रेम भावना से पुरुषों के साथ नारियां भी प्रभावित हुई थी और उन्होंने भी सामाजिक दबाव के बावजूद अपने हृदय की स्वच्छंद प्रेम भावना की अभिव्यक्त की। महादेवी के गीतों में प्रेम की जो पीर व्यक्त हुई है वह सुहृदयों से छिपी नहीं है, उनके लिए तो प्रिय से कम मादक पीर नहीं। लेकिन इस प्रेम की लहर ने इससे भी बड़ा काम एक और किया। व्यावसायिक प्रसार के कारण आधुनिक युग में मनुष्य मनुष्य के बीच जो मानवीय संबंध के स्थान पर व्यावसायिक संबंध स्थापित हो गए थे, उनकी शुष्कता को मिटाने में इस प्रेम भावना ने बहुत बड़ा काम किया। कृषि सभ्यता पर आधारित पुरानी समाज व्यवस्था में लोगों के बीच अधिक मानवीय संबंध थे। गांवों में चाहे कोई शूद्र हो अथवा तेली बनिया और अहीर या छत्री, ब्राह्मण धनी हो या गरीब, लेकिन ब्याह शादी अथवा जन्म मरण में प्रायः एक दूसरे के साथ सहयोग करने की परंपरा रही है। उत्सव समारोह में भी लोग प्रायः भेदभाव भूलकर भाग लेते रहे हैं। लेन देन में भी एक प्रकार की उदारता रही है। विद्या दान दान ही रहा है, उसे बेचने खरीदने की चीज नहीं समझा जाता था। लेकिन आधुनिक औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे उन पुराने सामाजिक संबंधों को तोड़ना शुरू कर दिया। व्यावसायिकता की जड़ जमने लगी। सभी लोग रुपए पैसे की भाषा में सोचने लगे। लोगों की दृष्टि उपयोगितावादी हो गई। स्वार्थों के संघर्ष होने लगे। जिंदगी में होड़ बढ़ गई। सहज और मंथर जीवनचर्या समाप्त हो गई। ऐसे युग में प्रेम की अमृतवाणी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। छायावादी कवि ने अपने प्रेम गीतों द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति की। इसी आशय की एक कविता स्वामी विवेकानंद की सखार प्रति है, जिसका अनुवाद निराला ने अपनी 1926 में सखा प्रति शीर्षक से किया था। उस कवि का संदेश यह है कि प्रेमवंत सब स्वार्थ मलिनता अनल कुंड में भस्मीकृत कर दो, सोचो भिक्षुक हृदय सदा का ही है सुख वर्जित। लेकिन जिस प्रकार प्रज्ञा का वही सत्य स्वरूप कभी हृदय में अपार प्रणय बनता है, कभी लोचनों में अनुप लावण्य बनता है और कभी लोक सेवा में अविकार शिव, उसी प्रकार छायावाद युग की व्यापक प्रेम भावना ने भी विविध सामाजिक संबंधों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण किया। स्त्री पुरुष के बीच प्रणय संबंध के क्षेत्र में छायावाद ने परस्पर सहकारिता तथा स्वच्छंदता का सूत्रपात किया। प्रणय संबंधी कविताएं तो पहले से ही होती आ रही हैं, लेकिन छायावादी कविता में प्रणय का जो आवेगपूर्ण तथा प्रगाढ़ रूप मिलता है वह अनूठा है। इसका मुख्य कारण यह है कि छायावादी प्रणय भावना स्त्री और पुरुष दोनों के पारस्परिक मानस द्वंद्व का परिणाम है। इस युग में स्त्री स्वतंत्र के कारण दोनों पक्षों को मुक्त हृदय से भाव विनिमय तथा साहचर्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे प्रेम के पूर्ण विकास तथा उन्मुक्त अभिव्यक्त के लिए द्वार खुल गया। एक ही कोट की दो स्वतंत्र सत्ताओं के योग से प्रेम का अधिक गुण और समृद्ध होना स्वाभाविक है। मध्य युग में यह सुविधा प्राप्त न थी। नारी को वह स्वतंत्रता प्राप्त न थी जो पुरुष को थी। फलतः पुरुष के लिए नारी प्रेम की वस्तु मात्र थी। पुरुष के लिए वह सामर्थ्य नहीं था जो खुलकर अपने को व्यक्त कर सके, क्योंकि सदियों पुराने बंदी जीवन ने नारी वास्तविक नारीत्व को कुंठित कर दिया था। इस तरह नारी का बंदी बनाकर पुरुष ने अपने ही आनंद की सीमा छोटी कर ली। प्रेम के पूर्ण विकास के लिए जो दोनों पक्षों की समान प्रबुद्धता अपेक्षित मानी गई है, उसका रीतिकाल में अभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों पक्षों में से एक पक्ष दास था। छायावादी युग में यह असमानता काफी दूर हुई। नई पीढ़ी के युवकों और युवतियों को शिक्षा के नए वातावरण में मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ। एक को दूसरे का नया परिचय मिला। साहचर्य ने भाव विनिमय को सुलभ बनाया तो हृदयों के पारस्परिक घात प्रतिघात से प्रणय संबंध के जटिल ताने बाने बुन उठे। इस अंत योग से प्रणय के क्षेत्र में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। प्रसाद की कामायनी में इस नूतन परिचय तथा प्रणय के सूत्रपात का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। मनु और श्रद्धा का मिलन जिस गंभीर ढंग से होता है और जिस प्रकार दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, हृदय खुल जाता है, वह देखने योग्य है। यह प्रथम परिचय सूर के किशोर कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन की शैशव सरलता से अधिक गंभीर है तथा तुलसी के राम और सीता के लतांतराल दर्शन से अधिक स्वच्छंद है। मनु तरंगों से फेंकी हुई एक मणि के समान संस्कृति जलनिधि के तीर पर पड़े हुए हैं और उनके इस मधुर एकांकी रूप को देखकर श्रद्धा प्रश्न भरा गीत गाती हुई प्रवेश करती है। मनु को एक झटका सा लगता है और वे लूटे से उस रूप राशि की ओर निखरने लगते हैं। इस प्रथम परिचय में धीरे धीरे साहचर्यजन्य प्रगाढ़ता आने लगती है, फिर भी एक दूसरे के प्रति एक तरह का रहस्य अनुभव होता है। परस्पर समीप आते हुए भी कहीं कुछ कमी मालूम होती है। जितना ही एक दूसरे को जानते जाते हैं उतने ही अज्ञेय प्रतीत होते हैं। सामान्य परिचय में एक नए ढंग के रागात्मक कुतूहल का उदय होता है। यह रहस्य परिचय की प्रगाढ़ता का सूचक है। धीरे धीरे इसमें और भी प्रगाढ़ता आती है और एक राका निशा में श्रद्धा को अपने समीप पाकर मनु पूछ बैठते हैं, कौन हो तुम खींचते यूं मुझे अपनी ओर और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर, ज्योत्सना निर्झर ठहरती ही नहीं यह आंख, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। और इस संकेत से ही नारी ने जैसा सारा उत्तर दे दिया, मनु अपने आवेग को संभाल नहीं पा रहे थे। कहां मनु ने तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार, किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार। उन्हें क्या पता कि सौंदर्य स्नेह से उत्पन्न होता है और फिर बदले में वह स्नेह उत्पन्न करता है। स्नेह और सौंदर्य की उत्पत्ति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होती है। इसके बाद प्रसाद ने प्रणय लुब्ध मनु के आविष्ट मन का जो चित्रण किया है वह आधुनिक कवि के लिए ही संभव था। मानस मंथन का यह चित्र पूर्ववर्ती साहित्य में शायद ही कहीं मिले। मनु को मंदिर घन में वासना के गीत गुजते से प्रतीत होने लगे। उनकी चेतना की परिधि चक्राकार घूमने लगी। उनका धमनियों में वेदना सारक्त का संचार होने लगा। वासना का ऐसा उद्दाम किंतु अश्लीलता वर्जित चित्रण विरल है। अशरीरी होने के साथ ही यह पर्याप्त मांसल है। इसकी सारी विशेषता भावावेग में निहित है।